अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज। साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी और मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पाकुकर। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर हमारे साथ विशेष रूप से श्रीमती पीयूषा प्रमोद अतिरिक्त वन निदेशक चंद्रपुर वन एकेडमी डी वन रक्षक परिवहन एवं विपणन विभाग मोबाइल वाणी के मंच से रूबरू होने जा रही है। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार मैडम जी।
नमस्कार, थैंक यू सो मच।
मैडम, हम आपसे आज जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है?
आज 29 है, जो कि पूरे पृथ्वी पर कुल मिलाकर 13 कंट्रीज में टाइगर पॉपुलेशन है और अलग अलग जगह अलग अलग टाइगर की स्पीशीज पाई जाती है। तो ये 13 कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो 2010 में रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुआ था, टाइगर समिट जिसे कहते हैं, जिसमें ये जो टाइगर बेयरिंग कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, ऐसी 13 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए कुछ करेंगे, कुछ कदम उठाएंगे और ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्पीशीज है टाइगर, इसको बचाने के लिए अलग अलग प्रयास करेंगे। तो ये समिट जो कि 29 जुलाई 2010 को हुआ था, तो उसी अवसर को मतलब उसी दिन को याद रखते हुए ये ग्लोबल टाइगर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है।
मैडम, जैसा कि जल जंगल जमीन की यदि हम बात करें तो उसमें बाघों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो हम आपसे जानना चाहते कि प्रकृति संरक्षण में बाघों का कितना योगदान मिल पाता है?
बाघ जो है, तो बाघ ये कीस्टोन स्पीशीज कही जाती है। तो कीस्टोन स्पीशीज माने क्या? तो बाघ का जो टेरिटरी होता है, बाघ के लिए जो हैबिटेट जरूरी होता है, बाघ जो है वो टेरिटोरियल एनिमल कहा जाता है, वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहता है। तो वो हैबिटेट में बाघ के साथ साथ बहुत सारे जीव रहते हैं और ऐसा कहते हैं कि जिस एरिया में बाघ है उस एरिया में बाकी इकोसिस्टम बढ़िया है, क्योंकि बाघ जिस जंगल में रहता है उस जंगल में कई सारे जीव पनपते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पनपते हैं और वहां से शुद्ध पानी जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसीलिए पूरे इकोसिस्टम में बाघ को कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है, जो कि बाघ का वैसे जो मतलब बाघ जिस एरिया में रहता है उस एरिया में बाघ का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो होता है कि वो अपना हर्बीवोर पॉपुलेशन कंट्रोल करता है और उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरह से बाघ जो स्पीशीज है तो उस हैबिटेट से लिंक है, इसलिए बाघ का जो संवर्धन है या बाघ का प्रोटेक्शन है दैट इज मोर लिंक टू प्रोटेक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो बाघ के साथ साथ जंगल बचते हैं, इसीलिए बाघ ये बहुत महत्वपूर्ण और कैरिज्मेटिक स्पीशीज है।
मैडम जी, जैसा कि आपने टाइगर रिजर्व में बहुत अच्छा काम किया है, तो हम आपसे भी जानना चाहते कि टाइगर रिजर्व का आपका कोई ऐसा अनुभव जो आज के दिवस पर आप अविस्मरणीय क्षण के रूप में बताना चाहेंगे?
मैंने 4 साल मेलघाट टाइगर रिजर्व में काम किया है। मेलघाट टाइगर रिजर्व ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब जो हमारी टाइगर कंजर्वेशन की जो भारत की हिस्ट्री है, मतलब मैंने आपको आपने पहले पूछा था कि 29 जुलाई ही क्यों, तो सेंट पीटर्सबर्ग में भले ही 2010 में ये डिसीजन लिया गया था, लेकिन भारत में बहुत पहले से टाइगर कंजर्वेशन के बारे में कई सारी चीजें हो रही है। जैसे 1968 में फर्स्ट टाइम हंटिंग बैन हुआ था, जो कि पहले हंटिंग बहुत कॉमन चीज थी, तो 1968 में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी इसलिए हंटिंग बैन किया गया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में लॉन्च हुआ, जिसके तहत 1974 में 9 इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व बने कंट्री में। पहले 9 जो थे उसमें से एक मेलघाट टाइगर रिजर्व हुआ करता है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसका एरिया काफी बड़ा है, कुल मतलब ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया टाइगर रिजर्व का है, सॉरी हेक्टर्स। और आज टोटली अपने पूरे देश में ऐसे 54 टाइगर रिजर्व है अलग अलग जगह पे। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व एक बहुत ही स्पेशल हैबिटेट है, क्योंकि हिली एरिया है पूरी तरह से, और ऐसा कहते हैं कि मेलघाट का जो टाइगर है, मेलघाट का जो बाघ होता है वो आसानी से दिखता नहीं है, जो है लेकिन दिखता नहीं है। तो कई बार ऐसे हुआ है हमारे साथ कि हम लोग फील्ड में जब भी पेट्रोलिंग करते हैं, फुट पेट्रोलिंग वहां, क्योंकि रास्ते इतने ज्यादा है नहीं हिली एरिया होने की वजह से, तो कई बार ऐसे होता है कि फुट पेट्रोलिंग करते हुए बाघों के साइंस दिख जाते हैं लेकिन बाघ दिखते नहीं, तो बाघ है या नहीं है ये कैसे फिर हम लोग पहचाने? या ऐसे मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने काम शुरू किया तो कई बार मुझे ऐसे लगता था कि बाघ दिखता क्यों नहीं है। कई बार हमने कोशिश की कि टाइगर का किल होता है कभी कभी, तो किल पे टाइगर खाने के लिए दोबारा आ जाता है, मतलब एक बार वो शिकार करने के बाद उसी किल पे दोबारा आता है। तो हमने कई बार टाइगर किल पे वेट किया, मचान पे रात गुजारी है कई सारी, लेकिन टाइगर दिखा नहीं मुझे इतने दिन में। लेकिन कैमरा ट्रैप्स जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी है और हम लोग टाइगर सेंसस के लिए मतलब पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए जिनका उपयोग करते हैं, तो ये कैमरा ट्रैप्स जो है वो काफी काम आते हैं, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल टाइगर को पहचान सकते हैं। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व की ऐसी कई सारी बातें हैं जहां कैमरा ट्रैप्स में से कोई इंडिविजुअल को हमने ट्रैक किया है, एंटीना लेके ट्रैक किया है, कॉलर किया है, तो कॉलर करके भी ट्रैक किया हुआ है। और एक एक घटना थी अविस्मरणीय जो टाइगर रिलोकेशन हमने टाइगर रिजर्व में किया था, मेलघाट टाइगर रिजर्व में, जो कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है यहाँ महाराष्ट्र में, चंद्रपुर ब्रह्मपुरी ये जो साइड है इसमें से एक टाइगरेस हमने वहां रिलोकेट की थी। किंतु उसका जो उसका एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि वो जंगल की तरफ ना जाते हुए वो गांव में चली गई और हमको उसे दोबारा कैप्चर करना पड़ा। तो वो एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस, भले ही सक्सेस स्टोरी नहीं थी लेकिन एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वो भी। और टाइगर्स को ट्रैक करना एक अलग ये होता है, उस दौरान आप कई सारे अन्य जीवों को भी जानने की आपकी आप कोशिश करते हैं, आपको पता चलता है कई सारी, जैसे वहां पे एक चांडी अश्वल जिसे बैजर कहते हैं उसको, वो एक एनिमल वहां पाया जाता है जो बहुत ही रेयरली दिखता है, लेकिन मेलघाट टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ साथ वो प्राणी भी हमें उस दौरान देखने को मिला। और एक टाइगर का जो मेन इशू है, मतलब टाइगर्स क्यों कम होते जा रहे हैं, हम लोगों को 2006 में केवल 1400 टाइगर्स बचे थे इंडिया में, और आज जो कि इस ईयर का जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन है तो अराउंड 3176 टाइगर्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो अप्रैल में जो डिक्लेयर किया था, तो उस हिसाब से 3176 टाइगर्स है, तो टाइगर की संख्या डबल हो गई है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अलग अलग स्टेट्स के और रिसर्चर्स है, इंस्टीट्यूट्स है, सिविल सोसाइटी है, जो पर्यटक आते हैं वो भी बहुत सारा इसमें योगदान देते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो यादगार है।
मैडम जी, जी जैसा कि हम नेशनल पेज पार्क टाइगर रिजर्व की यदि बात करते हैं तो यह नेशनल पेज पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर है जी। और अधिकतर वहां से शेर, टाइगर और अन्य वन्य पशु अपना एरिया छोड़कर चले जाते और कभी कभी ग्रामीणों पर भी हमला करते, तो ऐसे समय में शासन की क्या योजना है उन घायल लोगों के लिए?
जी, महाराष्ट्र में जो अगर कोई टाइगर अटैक से प्रोटेक्टेड एरिया में किसी की मृत्यु होती है तो 25 लाख तक का कंपेंसेशन मिलता है। साथ ही साथ में अगर कोई इंजुरी है तो इंजुरी कितनी सिवियर है इस बेसिस पे कंपेंसेशन मिलता है। और अभी कल ही जो इसमें जो बिल पास हुआ है अपने विधानसभा में, उस हिसाब से तो एक महीने के अंदर अंदर ये कंपेंसेशन देना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे चंद्रपुर जो लोकेलिटी है या ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट टाइगर की वजह से जनरेट होता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व में जो पर्यटक आते हैं तो उनको घुमाने के लिए जो जिप्सीज होती है या जो गाइड्स होते हैं या रहने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, ये सब जो लोकल गांव वाले हैं वो करते हैं। काफी सारे सफारी गेट्स है जो लोकल गांव वाले मैनेज करते हैं। तो जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन उसके साथ साथ इसमें से गांव वालों के लिए बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होता है। तो ये रोजगार और कॉन्फ्लिक्ट दोनों, मतलब कंपेंसेशन जो देते हैं, तो ये दोनों मिला के टाइगर और लोग साथ साथ में कैसे रह पाएंगे, को एग्जिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये को एग्जिस्टेंस का मॉडल काफी हद तक अभी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है।
मैडम जी, जैसा कि आज संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाघों के संरक्षण हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई और कैसे अधिनियम बनाए गए?
मैंने आपको पहले ये थोड़ा सा बताया है ऑलरेडी कि 1968 में हंटिंग बैन होने के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये जो अधिनियम आया तो ये 1972 में आया, जिसके तहत बहुत सारी स्पीशीज मतलब सिर्फ टाइगर को बचा के नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइगर कम होने की जरूरत टाइगर कम क्यों हो रहे हैं इसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है कि हैबिटेट लॉस, जो टाइगर का जंगल है जो उसका घर है वो घर हमने एनक्रोच कर लिया है, बहुत सारे जगह हमने फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट्स है, अलग अलग जगह वो जो आदिवास है उसका वो नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि ट्री फेलिंग हो रहा है, खेती के लिए जगह कम पड़ रही है आदमी को, तो इसलिए आदमी इंक्रोचमेंट कर रहा है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है पोचिंग, जो पोचिंग इसीलिए होता है बेसिकली टाइगर का कि चाइनीज मेडिसिन में टाइगर की बहुत अहमियत है और इंडिया में ऑलमोस्ट 70% वाइल्ड पॉपुलेशन है टाइगर का, तो ये वाइल्ड टाइगर्स की डिमांड चाइनीज कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है और इसका ट्रेड लीगल नहीं है, इलीगल है, तो इसके लिए पोचिंग करके चोरी छुपे बहुत सारे टाइगर के पार्ट्स इंडिया से स्मगल करके चाइना वाया नेपाल जाते हैं, तो इसके इसकी वजह से पोचिंग बड़ी तादाद में होता है। तो ये हैबिटेट लॉस और पोचिंग ये दो चीज रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाई गई। उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुए, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहले 9 टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर हुए जिसमें टाइगर को बचाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके बाद जो है तो कंटिन्यूअसली टाइगर प्रोजेक्ट्स का एरिया बढ़ता गया है और 54 टाइगर रिजर्व्स अभी इंडिया में मौजूद है अलग अलग जगह, जिसमें फोकस्ड एफर्ट होता है टाइगर का हैबिटेट बेहतर बनाने के लिए, टाइगर का जो भी प्रे है जिसके बेसिस पे टाइगर मतलब जो खाने के लिए टाइगर, क्योंकि टाइगर तभी बढ़ेंगे जब उनको खाने के लिए और रहने के लिए जगह मिले, तो जो उनका खाना है जाने की जिसे हर्बीवोर्स कहते हैं या जो भी डियर स्पीशीज है सांबर है चीतल है, तो इन सबको बढ़ाने के लिए ग्रासलैंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट हो रहा है। टाइगर एक ऐसा प्राणी है जिसे पानी बहुत पसंद है, पानी के अलावा बिना टाइगर रह नहीं पाता, तो अलग अलग जगह सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स जहाँ वाटर बॉडीज तैयार हो इस टाइप के कई सारे प्रयास हम लोग करते हैं टाइगर रिजर्व में, जिसकी वजह से ही 2006 से अभी टाइगर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल से ऊपर हो गई है। तो ऐसे कई प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से होती है अपने तरफ से करते हैं। इसके बावजूद जो आपने पहले भी पूछा था कि मतलब कम से कम कॉन्फ्लिक्ट रहे टाइगर डियरिंग एरियाज में, इसीलिए कंपेंसेशन के पैकेजेस होते हैं, इको डेवलपमेंट कमिटीज होती है हर गांव-गांव में जिसके तहत रोजगार उत्पन्न होता है टाइगर की वजह से, और ऐसे कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट्स ले रही है जिसका सक्सेस भी हमें टाइगर नंबर बढ़ने से दिखाई देता है।
मैडम जी जैसा कि भारतवर्ष में कई आस्था और श्रद्धा के स्थल बड़े बड़े जंगलों और पहाड़ों में है, विशेषकर कई जगह टाइगर रिजर्व व घोषित क्षेत्र में भी आस्था के स्थल है। जैसे हम बात करें पचमढ़ी की तो वहाँ पर भी टाइगर रिजर्व है, हम बात करते हैं महाराष्ट्र में तो वहाँ पर भी ऐसे कई आस्था और श्रद्धा के केंद्र है जैसे भीमाशंकर है, तो यहाँ पर टाइगर और जनता को बचाने के लिए शासन और प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है मेले के दौरान
तो ज्यादा इशू नहीं आता है, क्योंकि मतलब वन्य प्राणी से हम लोगों को जितना प्रॉब्लम हो सकता है वो बहुत कम होता है, हम लोगों की वजह से वन्य प्राणी को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब ये मेले लगते हैं और जब भी लोग रिजर्व के अंदर जाते हैं आस्था के स्थलों पे भी तो कई बार कचरा है कूड़ा है बहुत जमा हो जाता है, प्लास्टिक बढ़ जाता है और वो फिर पानी के साथ इसके साथ फैल जाता है, तो ये सब ना हो इसलिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, तो कूड़ा कचरा डिस्पोजल के लिए मेजर लिया जाता है, डिफाइंड एरियाज रहते हैं कि जिसमें जैसे कोई स्पेसिफिक डे पे ही लोगों को अंदर छोड़ते हैं, जो अपने धार्मिक भाव से जो लोग आते हैं उनके लिए उस दिन के लिए जो महत्व होता है, जैसे कोई महाशिवरात्रि का महत्व है कई जगह अलग अलग जो भी देवताएं हैं उनके हिसाब से जो महत्वपूर्ण दिन होता है उस दिन के लिए ये मेले की अनुमति दी जाती है। उस दौरान कोई इधर उधर ना भटके, जैसे हैबिटेट में अकेला कहीं ना जाए कम लोग, क्योंकि कम लोगों में फिर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। और नॉर्मली ऑल टाइम एंट्रीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि वो रिस्की हो सकती है वो वन्य प्राणी के लिए भी और आदमी के लिए भी, इसीलिए स्पेशल ओकेजन पे ही ये धार्मिक स्थल खुलते हैं और स्थानीय प्रशासन जो है वो उसका गार्बेज का वेस्ट का पूरा मैनेजमेंट करके भीड़ ना हो ज्यादा और शांति से चले, शांतिपूर्ण यात्रा हो, तो इसका ख्याल रखते हैं। और जो श्रद्धा भाव है वो बड़े बड़े नारे लगा के या लाउड स्पीकर लगा के व्यक्त ना करे, और मन में हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो मन ही मन शांति से पूजा करें, ऐसे आह्वान जो स्थानीय कृपा प्रशासन है वो हमेशा करते हैं।
मैडम जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न, जैसा कि अभी पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है और श्रावण मास भी चल रहा है, और ऐसे समय में अभी पचमढ़ी में नागद्वारी मेले का आयोजन होगा, और उस नागद्वारी मेले में महाराष्ट्र से नागपुर, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर से बहुत अधिक भक्तों की संख्या जाती है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्त मंडली को कि वे वहां जाकर जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के दिशा में कदम उठाए?
जी, मैं बस सबको यही आह्वान करना चाहूंगी कि हम जो भगवान के पास जा रहे हैं तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, जो भी श्रद्धा है हमारी, तो वैसे ही बाघ भी भगवान का बच्चा है। जैसे हमें अपने घर में किसी ने कूड़ा कचरा फेंकता है, कोई जोर से अपने घर में अगर चिल्लाता है, गाने गाता है, तो हम लोगों को बढ़िया नहीं लगेगा, हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, सही है ना? मतलब हम लोगों को हमारा घर है, हमारा हैबिटेट है, हमारी कॉलोनी है, हमारा एरिया है, वो साफ सुथरा रहे, किसी भी तरह के प्रदूषण से खाली रहे, कोई टाइप का प्रदूषण ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे जो हम लोग चाहते हैं वही चीज बाघ भी चाहता है। तो जब भी हम बाघ के घर में जाए तो हमारी आस्था और श्रद्धा लेके जाए, और उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो भी मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस है और रिस्पेक्ट है वो अपने मन में बनाए रखे, क्योंकि भगवान के लिए बाघ और आदमी समान ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए ये हमेशा मन में रखे कि हम जब जा रहे हैं भगवान से मिलने जा रहे हैं तो बाघ के घर में जा रहे हैं, तो बाघ के घर का भी रिस्पेक्ट बना रहे, और ये जो स्पीशीज है, स्पीशीज का कंजर्वेशन, इसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है, हमारे सबका ये हमारा धरोहर भी है, तो इसका हम लोग संरक्षण करें, और इस दिशा में हमारे जो भी कदम हो, मतलब कम से कम प्लास्टिक यूज करें, कम से कम नारे लगाएं, और जो 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 भी हम लोग इस दिशा में कर सकते हैं अपने जो भी हमारे कैपेसिटी में है, तो वो सब सही दिल से करें, यही मैं सबको कहना चाहूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। आप थी पीयूषा प्रमोद जगताप जी, अतिरिक्त वन निदेशक चंद्रपुर, वन एकेडमी, D1 रक्षक परिवहन एवं विपणन विभाग से, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।